पतितानां पावनेभ्यो नमो महावदनाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरस्तुते हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनवन्धो जगत्पते लोकेशदेशिकान्त राधाकान्तमस्तुते सत्त्वकान्तं गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी शुभानी आश्रादी श्रीमती जी ने स्वरूप को गुरु बैकुंठ से उन पर कृपा करने के लिए भेजा, ये साधारण बात नहीं। और ये स्वरूप जाकर के स्वयं इनके यहाँ उपस्थित हुए और अजातिक रूप से संग दान करके उनको हरि कथा सुनाई। और सुनाने पर भी यदि कुछ बाकी रह गया फिर वो तो स्वरूप के समान ही बन गए। जिस प्रकार से स्वरूप लाखों कोटि जन्मों में कितनी साधना करके और कितने कितने लोगों को पार किया और अंत में गुरु वृंदावन में पहुंचे, कृष्ण को सब तरह से देखा और यहीं पर वृंदावन में बैठे बैठे उनको सभी कुछ मने आशी लगे। ये साधु संगति नहीं है। इतना जान करके भी यदि साधु संग में रुचि न हो, कृपणता न हो, ये कैसे हमको साधु संग। और यदि साधु संग कुछ ऐसा मिल भी जाता है तो हम परवाह नहीं करते, हम भजन साधन नहीं करते, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात। तो साधु संग की महिमा आप बतला रहे हैं, इतना तो हरि कथा में रुचि उत्पन्न करने के लिए या लोग उत्पन्न करने के लिए ये सब का, और साधु संग करने के लिए उत्साहन देने के लिए ये सब कैसे साधु संग उत्साह हो। जब तक उसकी महिमा नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे, इसलिए उसको बतला रहे। यदि यद्यपि पर महत्संगम महात्मम एक ऐसा ही ये साधु संग की महत् व्यक्तियों की ये महिमा है साधु संग का कि जिन लोगों ने खूब प्रयत्न किया सर्व और भगवान की किस विशेष कृपा से भी विलंब से भक्तों को जो चीज की प्राप्ति होती है उसको ब्राह्मण ने वैसे प्रयत्न के अभाव में भी अत्यंत सहज चुप की वजह से गए। आप अपने स्थान पर क्यों नहीं आए, अपने स्थान पर आ जाइए और स्थान छोड़ भगवत कृपा से ही ऐसा प्राप्त होगा। भगवान की कृपा करने के लिए उत्पन्न तरह है किंतु भक्त भी ऐसा होना चाहिए। भगवान की कृपा दो तरह से होती है, बदला है कि शीघ्र। जैसे एक व्यक्ति कहीं गया किसी गृहस्थ के घर पर, उसने कहा कि ठाकुर जी हमारे घर में है, भोग लग रहा है, समय भी हो गया है, भोग लग रहा है और नैवेद्य प्रस्तुत है, आप यहाँ पर भोजन पालो चाहो तो, आप भोजन नहीं बना भोजन नहीं करना चाहते, स्वयं पाकी हूँ, चावल दाल तरकारी आटा मैदा घी भूगा चीनी सब्जी ये सब दे रहे हैं, बर्तन भी दे रहा हूँ, आप बना लीजिए, बना करके भगवान को भोग लगा करके खाइए दोनों में से कुछ भी। तो किसी को तो पका पकाई हुई तो सुन मिल जाती है, ये भगवान के है उसकी कृपा, और किसी को साधन के लिए वो दे देते हैं, सद्गुरु दे देंगे, सद्गुरु भी दे देंगे, उसे साधु संतों के पास में साधु संत का ये व्यवस्था कर देंगे और उसको सब प्रकार का सुख दे देंगे। ये दो प्रकार से भगवान की कृपा है, जिसमें साधु संघ के द्वारा भगवान ने इस ब्राह्मण को उनको दिया था साधन गोप कुमार को और इनको दिया की कृपा। कोई आश्चर्य मत करे या संदेह मत करे इसके लिए करना, किंतु उसके लिए भी समझो महत संग होना चाहिए, साधु संग भी बहुत प्रकार का होता है। जैसा साधु होंगे उनका संग भी वैसा ही प्रभाव पाल होते। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और उत्तम में भी परमोन्नतर महत अधिकारी हैं। यदि संत और कनिष्ठ अधिकारी के हुए तो वो किसी सदगुरु को निर्देश करके वहां पर पहुंचा दें, जिसको वाक्प्रदर्श सदगुरु कहते हैं। कहेंगे जो मैंने उनके उनसे सब कुछ सीखा है, आप वहां पर सीख सकते हैं, इसको वाक्प्रदर्श सदगुरु कहते हैं। दूसरे होते हैं मध्यम अधिकार में रहने वाले, जो कि शिक्षा और दीक्षा दोनों दे सकते हैं, शिक्षा और दीक्षा दे सकते हैं किंतु अंतर प्रेरणा नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी भी उपलब्धि बाकी है। इसलिए उतने ही शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा उनके हृदय को मैल को दूर करके और उनको धीरे धीरे ऊपर बनाए साधन करवाए। दूसरे जो महत व्यक्ति होते हैं, जैसे नारद जी हैं, सनक सनंदन हैं, हमारे रूप सनातन इत्यादि, वो क्या करेंगे, शक्ति संचार करके झट उसको पृथ्वी में लाए। जैसे श्रीनिवास आचार्य थे, रामचंद्र खां को स्पर्श करके और इतनों को ऐसे बना दिया, नरोत्तम ठाकुर जी हैं कितनों को बना दिया, हमारे प्रभुपाद जी थे उन्होंने कितने लोगों को कर दिया, वस्तुतः साधु संघ के प्रभाव से, संघ के महात्म के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने साधन भजन न करके भी स्वरूप की तरह ये कृतार्थ हो गए। यदि कहो ये कैसे हो गया तो उसके लिए कहते हैं, ऐसा कभी संशय न करना साधु के संग के लिए। यदि संदेह किया तो संदेहात्मा विनश्यति, अर्थात उनको कुछ लाभ नहीं होगा। और जिनको ऐसा सत्संग का ये है, सत्संग के मूल कारण है भगवान, अतः किसी स्थिति में भी संशय न किया जाए। सत्संग के द्वारा समस्त कुछ संभव हो सकता है। तृतीय स्कंध में देवहूति जी ने, देवहूति जी को कपिल देव जी ने कहा, संग की कुछ महिमा, संगज संस्कृत हेतु असत्सु विहितो अधिया स एष साधु कृत्यो एव साधु कृत्यो निसंग कार्यकल्प है। जो संग एक अज्ञानी पुरुष जानबूझ करके नहीं, अनजान में ही विषय लोगों का संग करता है तो वो संस्कृत का हेतु बन जाता है, संसार का हेतु बन जाता है। संसार माने क्या, पुनः पुनः संसार में आना, संसारिक सुखों में आसक्त रहना और उसके लिए दुख को, इसको कहते हैं संसार। वो संसार का हेतु बन जाता है। अज्ञानता से विषय लोगों का संग करते 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 उनके संग में रहते रहते वैसे ही भोग विलास में लिप्त हो जाता है और संसार में आवागमन करने लगता है। ये एक होता है। यदि उसी तरह से वो साधुओं के संग में रहकर उसी आसक्ति से जैसे विषय लोगों का संग किया, ऐसे साधु पुरुषों का संग करके उनके साथ में आसक्त हो गया, उनके साथ में खाना पीना रहना और उनकी बातों को सुनना, उनकी सेवा में लग गया, तो वही निसंगत्वाय कल्पते, वो निसंग हो जाता है। निसंग माने संसार की आसक्तियों को छोड़ करके और भगवत धाम को प्राप्त होता है, भगवान की परमा भक्ति को वो प्राप्त करता है। यहाँ पर नरसंग का ये बताया है विरक्त संसार से विरक्त हो जाता है और प्रेम युक्त भवति, भगवान के चरणों में प्रेम युक्त हो जाता है। क्यों? निसंग माने फल की कामना से रहित, निसंग माने फल की कामना से रहित, अन्नाभिलाषिता शून्य, ये इसका तात्पर्य है। तो अंत में भगवत भक्ति को ही प्रेमा भक्ति उत्तमा भक्ति को वो प्राप्त करता है। जो वशिष्ठ नाम का एक ग्रंथ है, वशिष्ठ जी ने लिखा है, अत्यंत वैराग्य का ऊंचा ग्रंथ है, किंतु थोड़ा सा माया बाद में वो ले जाता है, इसलिए वैष्णव लोग उस ग्रंथ को कभी नहीं पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है सदा संतो अभिगंतव्य, संतों के पास में सब समय जाना आना, उनके पास में प्रेम से उनके पास में जाओ, यत्न यद्यप यद्यप उपदेशम की ना, यद्यपि वो उपदेश न कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे, तभी उनके पास में जाओ। जाहि स्वैर कथा तेषां उपदेशो भवन्ति, यदि स्वैर कथा विषयों की बातें भी इधर उधर की भी बातें कुछ करते हैं, उसी में कुछ न कुछ उपदेश जरूर, यदि संभव हो। उन लोगों के गुरु जी भी कहते थे हम लोगों को, तो उन लोग ऐसा मत करना जब कुछ लोग आ जाते हैं तो हरि कथा होती है तो सुनते हो, और जब उनसे कुछ वैसे की बातें करता हूँ तो तुम लोग चले जाते हो, ऐसा मत करना, बैठे रहना वहाँ। मैं क्या बातें करता हूँ उनको उस विषय में ही, विषय की बातें कह करके विषय से ही उपन करा देता हूँ, इसलिए तुम लोग सुनना ध्यान से, समझना ये कैसे इन लोगों से बातें की जाती है, नहीं तो उसी में डूब मरते, उसमें भी कुछ न कुछ शिक्षा है। इसलिए कहते हैं स्वयं कथा तेषां, संसारिक बातों में भी उपदेशो भवन्ति ते, उनके संसारिक बातों से ही उपदेश हो जाता है और हम समझते हैं कि इस जगत में कैसे रहा जा सकता है, ये समझते हैं। शून्य अपूर्णम अपूर्णता मिति मृति अपि अमृतायते आपक संपत्ति इवाभाति दिव्य जन्म समागा समागमा। यदि हम एक किरासन तेल एक टी में कनस्तर में बंद है और वहां जाते हैं तो उसका गंध लगता है, उसी तरह से कोई काली कोठरी हो उसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं कपड़े कपड़े में लगी जाएगा बिना इच्छा के। यदि ठाकुर मंदिर में जाएंगे तो मंदिर का सुगंध जरूर आएगा ही, तो क्यों नहीं जा संत पुरुष होंगे वहां उनके विचारधाराओं का गंध नहीं आएगा, जरूर आएगा। प्रत्येक चीज में अपना एक पार्टिकल होता है, धूमी होती है, जैसे कमल में पराग होता है, पराग से सुगंध उड़ करके चारों तरफ के वातावरण को बड़ी सुगंधित बना देती है, उसी तरह से शक्ति इत्यादि में दुर्गंध निकल करके सबको बिना इच्छा के ही दुर्गंधमय बना देता है, उसी प्रकार से संतों के हृदय में भी कुछ चिन्मय रश्मियाँ हैं जो निकलती हैं और वातावरण को शुद्ध बनाए रखती हैं। इसीलिए आज भी सिद्ध महापुरुषों का जहाँ भजन स्थल और स्थान है वहाँ पर जाने से तुरंत सिद्धि हो जाती है, मन लग जाता है, अन्यथा दुष्ट लोगों के जगह पर जाने से बुद्धि चंचल हो जाती है, इसलिए सिद्ध महापुरुषों की भूमि में जाने से चित्त अपने आप स्थिर हो जाता है। इसलिए कृष्ण लीला की स्थलियों का इतना महत्व है। यदि भी उपदेश न करें तभी उनके पास में जाओ, स्वाभाविक रूप में उनकी कथाएं ही उपदेश हैं। यदि नहीं भी बोलते हैं तो कोई हर्ज नहीं, वहीं पर बैठो, वो अपने आप कुछ न कुछ स्फूर्ति होगी, तुम्हारा हृदय निर्मल होता जाएगा, कोई बुरी बातें हृदय में आएगी नहीं। संतों का ये लक्षण भी है, जिनके निकट जाने से कोई किसी प्रकार की बुरी भावना हृदय में उदित न होती हो, उनको समझो जैसे ये संत महापुरुष हैं। और ऐसे विद्वान जो विद्वत जन मन ऐसे भगवत भक्त यदि कहीं मिल जाए, तो किस कोई साधक या साधक न हो, भक्ति शून्य भी व्यक्ति, उसके हृदय में भक्ति की पूर्णता हो जाती है। शून्य अपूर्ण आयतम, शून्य हृदय में भी भगवत भक्ति का संचार हो जाता है और उसमें जहां पर माया मरीचिका विलास कर रही थी, उस हृदय को आनंदमय बना करके कृष्ण भक्ति का क्षेत्र उसे बना देते हैं। ये उसमें मृत व्यक्ति भी अमृत हो जाता है। मृत व्यक्ति माने क्या, जो भगवत भक्ति से शून्य है वो मृत ही है, मृत ही अर्थात जड़ीय भाव भी उसका अमृत के रूप में बदल जाता है। अर्थात मृत्यु स्वरूप या मर्त देह भी अमृत स्वरूप अथवा भगवत सेवा के लिए उपयोगी बन जाता है, साधु संग या शरीर से जो मृत्यु के लिए काम कर रहे थे, अब उसी से भगवत सेवा करके यहां तक कि स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाएगी उसी शरीर से, इसलिए भगवत सेवा के लिए उपयोगी बन जाता है। बिल्व मंगल जी संसार में रम रहे और साधु संग से उसके उपदेश से और पासी में फिर अपने गुरु जी से भेंट करने का, या शिक्षा गुरु सिकी पुच्छ मौनी से की प्रेरणा से कैसे बन गया। भागवत का ये लोग भी साधु संघ की महिमा से कहां चले गए। खग माने जटायु, मृगा माने बंदर इत्यादि, ये सब हनुमान यमवंत नल नील ये सब बन गए। तृतीय स्कंद में कपिल देव जी ने कहा है सतां प्रसन्न नाम वेद्य संविदो भवन करित कर्ण रसायनं तथा तद्योसनात् आशु अपवर्तमानं श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यते। कपिलदेव जी ने अपनी मैया को फिर से कहा सतां प्रसन्नो मम वेद्य संविदो, तृतीय स्कंद में कहा है विदुर एकम, मैत्रेयी ऋषि ने विदुर से कहा कृष्ण जब अपने स्वधाम में जाने लगे तो विदुर वहां पर पहुंचे। दुर्योधन ने उनको अपमानित किया, अपमानित करने पर वो निकल गए और बहुत वर्षों तक तीर्थों में घूमते रहे, अंत में द्वारका पहुंचे। कृष्ण की लीला उपरम होने की बात थी, माने अभी अप्रकट होने वाली थी, उसके पहले पहुंचे। वहां पर उन्होंने उद्धव के माध्यम से विदुर के पास में कुछ भक्ति की बातें कहवाई, तो विदुर से तुम मिलना और उनको हमारी बातें कहना, ये श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध इत्यादि में इस सबका वर्णन है। वहां पर उद्धव जी रोते हुए भगवान के संबंध में, द्वारकाधीश के संबंध में बहुत से कुछ कहे। उस वहीं पर उसके बाद में इनको आदेश दिया कि आप चले जाएंगे बद्रिकाश्रम में, और वहां पर मैत्रेय ऋषि से भगवत तत्व की बातें सुनेंगे। तो वही मैत्रेय ऋषि इनको भगवत कथाएं सुना रहे हैं और कह रहे हैं, जत सेवया भगवतां कुटस्थस्य मनुद्दिशा रत्तिराशो भवेत् तीव्र पादयोर् दर्शनार्थम। मालूम होता है कि विदुर जी को कह रहे हैं मैत्रेय, साधारण राष्ट्र भक्ति की बातें तब हो सकती है, किंतु इसमें कह रहे हैं जग सेवया, जग भागवत सेवया। इसके पूर्व प्रसंग में भागवत माने वैष्णव की सेवा, महत्पुरुषों की सेवा की बात है, जिनके हृदय में भगवती कथा विराजमान रहती है। ऐसे महाभागवतों से भगवत कुटस्थ हो, जो भगवान कुटस्थ हैं, कूट माने जैसे सरसों में तेल कूट है, कुटस्थ है, जैसे दूध में घी कुटस्थ है, ऐसे ये प्रभु जो है कुटस्थ, कूट माने अत्यंत गंभीर रूप में छिपे हुए हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। कुटस्थ मधुर दिशा, ऐसे जो मधुर दिशा मधु का ही विनाश करने वाले हैं, संसार रूपी मधु का विनाश करने वाले हैं, और उसी का प्रतीक मधु है, लवणासुर का पिता मधु, जो देवताओं का और संतों का विद्रोही था, उसी के रूप में भगवान ने उसे मारा था, इसलिए मधु दिशा। रति राशु भवे तृप्त, इन लोगों के संग से भगवान कुटस्थ मधु द्विष के जो भक्त हैं, इनके संग से रति राशो भवे तीव्र पाद योग दशना, उनके द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण होता है, और उस स्मरण से ही व्यसन आर्तन, व्यसन संसार के प्रति जो आसक्ति है उसका छेदन हो जाता है, उसका हृदय परम निर्मल हो जाता है, और उसे भवे तीव्र, उसे तीव्र रति राशो भवे, उसे क्या होती है भगवान के चरणों में रति राशो भवे, अर्थात रति माने यहाँ पर प्रेम रखो या रति भी रख सकते हैं, राशो माने आनंद उत्सव, आनंद उत्सव प्रति क्षण क्षण में आनंद उत्सव उसमें किसी के द्वारा उस रति के प्राप्त होंगे, अथवा भवे तीव्र, तीव्र माने उत्कंठा की चरम दशा में प्राप्त हो करके भगवान के चरणों के प्रति राशो भव, राश गोपियां जैसे रास में सम्मिलित हुई थी, उस रास में भी ऐसी गति उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि रास में वो सम्मिलित हो जाए, और सम्मिलित होने पर पादयोग व्यसनार्दन नित्य करेगा या नित्य करेगी, उस समय नित्य करेगी तो पैरों में दर्द हो जाएगा, तो उसको वो कैसे दूर होगा, अर्दन उसको वो दूर करेंगे कैसे, अपने आप जिनके चरणों में रति हुई है वो खुद आकर के और उसके उस व्यसन को, पैरों के थकावट को वो स्वयं दूर करें, ऐसे राश में वो नित्य करेगी, राश में कृष्ण का चित्त हर लेगी जिसे कि कृष्ण स्वयं उसके पैरों की थकावट को दूर करने के लिए लालायित हो जाते हैं। ये इनकी व्याख्या है हमारे सनातन गोस्वामी की। क्यों कारण है? क्यों? क्योंकि कृष्ण गोपियों के दुख को देख नहीं सकते, इसलिए स्वयं उसको अपने दम करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ये है पद की उत्क्रांति है, उसको दूर करने वाली श्रीमद् भागवत 3:29। जब सेवा भगवता मधुर भगवत तस्थस्य मधुर दिश रतिराशु भवे तीव्र पादयो व्यसनार्थम। इसलिए साधुगण किनकी सेवा से ये होगा? भगवान के चरणों में जिनकी रति है और जो शख्स में उन लीला कथाओं का संकीर्तन करते हैं और मनी मन उन लीलाओं का स्मरण करते हैं, ऐसे जातरति जो भक्त लोग हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करने से ही वो भगवान मधुर दशा की कथाओं का गान करेंगे और सुनकर हमारा वो रुचि होकर के क्रमशः उस चीज को प्राप्त करेंगे। फिर कहते हैं कपिल देव जी भी ये सनातन गोस्वामी एक एक करके उपस्थित कर रहे हैं, साधु संघ की महिमा देख और इतना जान सुन करके भी यदि साधु संघ में रुचि नहीं हुई और साधु संघ में पॉकेट भार करने की ही चिंता रही और शरीर की ही चिंता रही और घर की ही चिंता रही तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खबरदार, घर को काल दो समझो, घर में जो त्यागी है उनके लिए कह रहा हूं, आज जो घर में रहते हुए भगवान का भजन कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो तो साधुओं का संग करने हैं, और नहीं तो उन लोगों के लिए कालस्व में महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी हमारे गुरु वर्गों को देखो कैसा उनका अद्भुत चरित्र है, इन चरित्रों को ख्याल रखो। माता मोरे प्रीति करे
ये मोर बंधन,
फिर मोर बंधन ये याद रखो। माता ही नहीं कोई भी संसार का, क्यों? यदि माता पिता साधारण हैं लौकिक, वो किसी न किसी प्रकार से बांधने की ही चेष्टा करेंगे, बंधन में लाने की। माताएं जितनी भी प्यारी हों, अधिकांश सभी नहीं, वो संसार में ही गिराने की चेष्टा करेंगे, ये संसार का। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा राजा मोरे प्रीति करे, राजा मुझे प्रीति करता है, अरे प्रीति करके क्या देगा, पुत्र नहीं दे सका तो नाती परनाती और दूसरे लोग क्या देंगे, अभी हमको ही भक्ति नहीं पैदा हुई तो हम दूसरों को भी क्या देंगे, इसलिए राजा मोर प्रीति करे मोर बंधन। राजा जो प्रीति करता है ये हमारे लिए, वो संसारिक वस्तु में देगा उसी में चित्त को लगा देगा। साधुओं के समागम है, समागम माने क्या, सम आगम, सम माने साधु, सम्यक माने सम्यक भी होता है, और साधु जैसे हृदय वाला है उसके समीपूत उसके समकक्ष उसका भी हृदय बना करके जाएगा तब तो उनकी भावना को कुछ धारण कर सकता है। न देवो देवम अजय
देवम भूत्वा देवम जजे,
इसलिए देवम भूत्वा
देवम जजे,
देव हो करके देवता की पूजा करो और वहां से गिर करके अदेव हो करके अदेव की पूजा करेंगे तो हम लोग कैसे उभरने पड़ते हैं। इसलिए वैसे समभरातल पर उपस्थित होना चाहिए। वहां पर क्या होती है, भवंत रितकर्ण रसायन नाम कथा, सतान प्रसंग नमो वीर्य संविदो मम मेरी वीर्य संबंधित प्रभावशाली महात्म युक्त हरि कथा उत्पन्न और शक्तिशाली हरि कथा अंशीगत होती है और जिससे रित कारण रसायन कथा रित और कर्ण कानों से भी परम मधुर लगने वाली और हृदय में अर्थ इत्यादि के द्वारा अनुभव परम मधुर लगने वाली। बहुत सी बातें ऐसे होती है ना कर्ण रसायन नहीं होती किंतु अंत में मधुर होती है। संत लोग अपने वाक्य रूप कुठार से हमारी संसारिक आसक्तियों को उपदेश के द्वारा काट देते हैं।
संत एवास
छिन्दन्ति मनोव्यासं उक्तिभि, उक्ति रूपी कुठार के द्वारा पाणी रूपी कुठार के द्वारा हमारी आसक्तियों का छेदन करते हैं। जैसे नारद जी ने कहां कहां पर उन्होंने किया, पितृकेतु महाराज के उपाख्यान में देखो, संसार आसक्त उसी में मग्न रहने वाले व्यक्ति को वहां पर उपस्थित हुए, कहा जी मेरी कथा को सुनो, तो उसने कहा जी नहीं आप भी हमारी कथा सुनिए। नारद जी ने अपनी कथा सुनाने के लिए बहुत उनसे चेष्टा की किंतु वो अड़ गए, महाराज जी हमारी ही कथा सुनो। अंत में नारद जी ने कहा जी तुम ही सुना लो पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, हमको लड़का इतना ही होता है लड़का भी, यही तो मैं कहना चाहता था लड़के से सुख नहीं होता, तुम लड़का मत मांगो भगवान की भक्ति मांगो। उन्होंने कहा कि हमको अभी लड़के की जरूरत, भक्ति की भी जरूरत नहीं, भक्ति बुढ़ापे अवस्था में और बड़े जब हो जाएंगे तब देखेंगे। बहुत समझाया नहीं माने, कहे ऐसे नहीं सुनेगा, तब क्या किया, अच्छा ठीक है देखा जैसे ऐसे तो मानेगा नहीं तो एक उपाय किया, वो अंगिरा ऋषि को भेजा। अंगिरा ऋषि ने उनको समझाया, वो भी नहीं माने, कहना जी अच्छा तुमको ऐसा ही होगा, तुमको लड़का पैदा होगा,
हर्ष और शोक प्रद।
तुमने कहा ठीक है लड़का तो पैदा हुआ, आनंद में हो गए। कुछ दिन के बाद में लड़का भी हुआ, 5 वर्ष का हो गया, बड़ा हुनहार बड़ा सुंदर, हर्ष शोक प्रद का समझाने हर्ष तो हुआ आनंद हुआ, तो बधाइयां बाजे में लग गई। और कुछ दिन महारानियों का उसे द्वेष हुआ और उन्होंने उसे विष खिला दिया, वो मर गया। जब सब लोग रोने लगे तो नारद और अंगिरा ऋषि पहुंच गए, कहा अब सुनेगा, अब ऐसे नहीं सुने, जिनके मुंह में जब नहीं था तभी इसके मुंह में व्यक्त था और अब जब मर गया है अब उसी मुंह में अब रो रहा है, जब पैदा हुआ तो मुंह में आसक्त होगा किसी की बात नहीं सुनता, उस समय नारद जी जाते हैं पुत्र होने पर नहीं सुनता, इसलिए सोचा कि अब ठीक है बस लड़का मर गया, मैंने समाधि से अपनी आत्मा को वहां से हटा लिया, लड़का मर गया, लड़का वही थे समाधि से निकल गए तो वो मर गया। अब कहा जी अब सुने, खूब रोने लगे, भाई किस लिए रोते, सहानुभूति दिखला, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा लड़का मर गया, या लोगों ने बतला दिया ये लड़का मर गया, अच्छा लड़का मर गया, अच्छा ये जन्म के पहले तुम्हारा क्या लगता था भाई, मैं अभी जीवित कर देता हूँ किंतु बतला तो हमारे प्रश्न, तो उनका जैसे अच्छा कोई जरूर ऐसा कहा होगा कुछ न कुछ, लड़का हम जिला देंगे किंतु ये बतलाओ कि इसका पहले क्या लगता था, अच्छा अब मर गया तो अब क्या लगता है, तो कुछ नहीं। और ऐसे ऐसे कितने सब उदाहरण उनको दिया, अंत में उनको बोध कराया लड़के को जिला दिया, अरे सोता है उठ जाओ, लड़का उठ गया। अरे तुम्हारे माता पिता ये तुम्हारे लिए रहे, कौन से माता पिता, हम के माता पिता कितनी बार हो गए, ये रो रहे हैं। राजा ने देखा कि हमको देख करके भी ये पिता नहीं मानते। अंत में उन्होंने कहा कि हमारा लड़का मिल गया, अब लड़के की जरूरत नहीं। जब इनके उपदेश को सुना, लड़के ने कहा कि कितनी बार इनका पुत्र मैं और कितनी बार इनका पिता हुआ, संसार चक्र में घूम रहा हूं, मैं तो भगवान का दास हूं, एक जन्म इनके साथ में संबंध हुआ और फिर लाखों जन्म में कोई संबंध नहीं, जैसे बाद में एक तीन का दूसरे तीन के से मिल जाता है और फिर अलग हो जाता है। एक धर्मशाला में बहुत से लोग आते हैं, अभी कथा में हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं, कथा समाप्त हो जाएगी, कोई यहाँ पर नहीं, सब अपने अपने घर में चले जाएंगे। ऐसे ही ये जगत एक मेला लगा हुआ है, सब इससे मिले हुए हैं, मेले में जब तक हैं तब तक तो ये संबंध है। आज यहाँ मेला खत्म हो गया, बस अलग अलग में सब चले, कोई एक साथ में नहीं रहने। और भी बहुत से उदाहरण उनको दिए, बल्कि ये उदाहरण दिया एक कपोत कपोती का, दोनों वो जंगल में चरने गए, और जो जीवित हैं उनकी यही दशा है, वो अपने भाई कुटुंब और दूसरों के लिए रो रहे हैं और काल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मैं बाण चलाऊं, ये भी खत्म हो जाए, वो भी खत्म हो जाए, भगवान के भजन के लिए जो समय था उठा ले। ये इसको कहते हैं व्यासंग उक्ति, अपने बाणी रूपी कुठार के द्वारा उनका मोह दूर कर दिया, अंत में भगवान भजन में निकल गए। ऐसे ही सनक कुमार, सनक जी वैष्णव लोग सब होते हैं, बिना किसी काम के और वहां जा करके बस ऐसी ही शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। और होती है क्या, ये तो हुआ मन की इसको दूर करने के लिए, तो ब्रज संभवंत रीत
कर्म,
तो वो तो उसकी एक प्रकार की भी, और दूसरी होती है जिनकी कृष्ण में अत्यंत अधिक अनुराग है, वो लोगों की अपनी वाणी के द्वारा उठार के द्वारा दूर करके आ सकती, और तब परम ब्रजवती भगवान की कथाओं का वर्णन करते हैं। कौन सी, जैसे यशोदा जी ने विश्व ब्रह्मांड के लिए अजीत, ब्रह्मा और शंकर के लिए भी अजीत, जो कृष्ण है उनको भी बांध लिया, चुटकी बजाते ही बांध लिया, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। ऐसी प्रभाव की कथाएं जिसके सेवन से अपवर्ग वर्तमानी, अपवर्ग वर्तमानी मैंने अपवर्ग कहते हैं साधारण रूप में मोक्ष को, मोक्ष भी रास्ते में है, अभी प्रारंभिक में, अभी मोक्ष का है वर्तमानी है, वो तो संसारिक आसक्ति कट जाने का नाम मोक्ष, वो मोक्ष कहाँ स्थित है, प्रारंभ में ही। ऐसे जो भगवत प्रेमा भक्ति ब्रज की है उसके ये रास्ते में भी पड़ रहा है, प्रारंभिक रास्ते में। ऐसे भगवान के प्रति पहले श्रद्धा, इसके बाद में रति, और इसके बाद में प्रेमा भक्ति उत्पन्न। क्या समझा यहां पर जो बतलाया ना, वर्ग अपवर्ग वर्तमिन, अपवर्ग जिसके प्रारंभिक रास्ते में ही पड़ता है, ये मत समझिए मोक्ष के रास्ते में, भक्ति का जो पथ है वर्तम है उसकी प्रारंभ में ही ये जो अपवर्ग पड़ जाता, अपवर्ग माने न वर्ग त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष को भी ले लो, ये सब भक्ति के प्रारंभिक दशा में ही हरिनाम करने से ये दूर हो जाती, उनका रास्ता समाप्त हो जाता है। ऐसी जो भगवान के प्रति पहले श्रद्धा होगी, श्रद्धा माने कथाओं को सुनते सुनते भक्ति शून्य व्यक्ति भी सुने तो उसके हृदय में श्रद्धा हो, ये श्रद्धा ही भक्ति लता का बिना साधु संग के बिना हरि कथा के शुद्ध और दृढ़ पुष्ट, ये श्रद्धा नहीं, श्रद्धा कहते हैं कृष्ण की भक्ति करने से हमारा समस्त कर्मों का करना हो गया इस मनुष्य जन्म में, ऐसे दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा। अभी जिनको विश्वास ऐसा नहीं है वो संसारी कामों में लगे हुए हैं, जिनको ऐसी दृढ़ विश्वास है कृष्ण की भक्ति करने, भक्ति माने भगवान का नाम करने से, उनका कीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से, उनके तीर्थों में जाने से, उनके भक्तों के मुख से हरि कथा सुनने में, ये जो नौधा भक्ति पंचदा भक्ति इत्यादि है इसके श्रवण करने से शुद्ध भक्ति अवश्य और उसे हमारा जीवन प्राप्त हो जाएगा। ये श्रद्धा उत्पन्न होकर के उत्पन्न होने पर भी यदि निरंतर साधु संग न किया जाए तो यह श्रद्धा सूख जाती है, अंकुरित नहीं होती। जैसे हमने एक तुलसी का बिरवा आज लगाया छोटा सा, यदि प्रतिदिन इसको देखभाल न करें और इसको पानी न दे उचित समय पर या अधिक पानी उसमें डाल दें तो या तो गल जाएगी या सूख जाएगी, कुछ भी काम नहीं है।